हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हायिर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसागुणं एसो पंच नमो यारो सव्वपावपनासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं भवै मंगलं परमं भवै मंगलं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य ज्ञान सागर महाराज की जय। श्री संग्र की जय। का प्रकरण अपूर्ण था, उसी प्रकरण को आगे बढ़ाया जाता है। मोक्ष मार्ग में हम सबको चलने की इच्छा रहती है, क्योंकि आत्मा को धर्म एक प्रिय वस्तु है। धर्म से सभी आकर्षित रहते हैं, इसलिए उस जीव के द्वारा बाह्य में ये चेष्टाएं देखी जाती है कि बराबर वह मंदिर आता है, दर्शन करता है, पूजन आदि करता है, साधुओं का सत्संग में रहने की बराबर जिज्ञासा बनी रहती है इत्यादि। ये जो अनुष्ठान बाह्य रूप से दिखाई देते हैं, उससे पता चलता है कि व्यक्ति धर्मात्मा है, धर्म से आकर्षित है, धर्म का प्रेमी है, आत्म कल्याण चाहता है। और आत्म कल्याण कहां होता है? आत्मा में, आत्मा के द्वारा, आत्मा से आत्मा को होता है, या आत्मा का कल्याण पर के द्वारा, पर से, पर में, बाहर में होता है? आत्मा का कल्याण कहां होता है? बाहर होता है कि अंदर होता है?
अंदर
होता है। अंदर होता है तो कब होता है? जब वह जीव सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये धर्म है, इनको जब वह ग्रहण करेगा, तब वह होगा। धर्म तब होगा जब वो ग्रहण करेगा। ग्रहण नहीं करेगा और फिर ग्रहण ना करते हुए बराबर अनुष्ठान बाहर के बने रहते हैं, मंदिर आना, सत्संग करना, पूजा करना, अभिषेक करना, दान देना, बराबर ये अनुष्ठान बने रहते हैं और धर्म के मार्ग पर चल नहीं रहा है, केवल अनुष्ठान कर रहा है, तो क्या केवल अनुष्ठान करने मात्र से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये उपलब्ध हो जाएंगे?
नहीं,
नहीं होंगे। इसके लिए अलग से प्रयत्न पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आत्मा के परिणामों को बहुत सुधारना पड़ेगा। श्रद्धा को जगाना सम्यक तो है, और जिस पर श्रद्धा जगाया है वह सच्चे देवशास्त्र गुरु है या सच्चे तत्व है, उनके ऊपर श्रद्धा ने जगाया है। श्रद्धा जिस पर जगती है वो श्रद्धाभूत वस्तु हमारे लिए सदा ही आकर्षित बनाए रखती है। हम दर दर आकर्षित होते हैं उधर, एक दिन भी गए नहीं गए तो मन नहीं लगता, चाहे वो गुरु हो, चाहे शास्त्र का स्वाध्याय हो, चाहे भगवान की पूजा हो। श्रद्धा जहां होती है वहां आकर्षण होता है, और जहां श्रद्धा नहीं होती वहां आकर्षण भी नहीं रहता। ये बातें सही है ना? जहां श्रद्धा होती है वहीं पांव उठते हैं, और श्रद्धा नहीं होती है तो पांव भी नहीं उठते। और दूसरा कोई कहे बीच में कि आप तो जाते ही नहीं है, नहीं नहीं वो तो जाता हूं लेकिन लेकिन क्या श्रद्धा नहीं है, तो जाते भी हैं तो ऐसे वैसे कभी एक आध बार गए नहीं गए, इस प्रकार श्रद्धा के बिना कार्य चलता रहता है। श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण होता है, और सच्चाई के प्रति जो हमारे आत्मकल्याणकारी तत्व हैं या सत्संग हैं उनके प्रति सदा श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है, उधर आकर्षित होकर के रहने का नाम सम्यक दर्शन है, उधर सदा प्रभावित रहना ये सम्यक दर्शन है, और वह प्रभावित रह करके वहां जाना भी उद्देश्य यही है कि यह श्रद्धा सदा बनी रहे और सम्यक दर्शन हमारा सुरक्षित रहे, ये श्रद्धा कहीं गायब न हो, कहीं मिट न जाए। इस प्रकार वह सोचता विचार करता है। तो कल की बात अधूरा रह गई है, उसको ले लेते हैं। बंद के हेतु कितने प्रकार के हैं?
पांच
प्रकार के। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांच हैं। मिथ्यात्व से भी बंद होता है, ऐसा यह सूत्र बता रहा है। मिथ्याविरति प्रमाद कषाय योगा बंद हेतवः, ये आठवें अध्याय का पहला सूत्र है। किस ग्रंथ का? हाँ, ये भी पता रहे। तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य देव ने आठवें अध्याय बंध अधिकार को लिखते हुए, बंध तत्व का निरूपण करते हुए पहला सूत्र को ही रख दिया कि बंध के पांच भेद हैं, बंध के हेतुभूत पांच भेद, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। पहले नंबर में मिथ्यात्व है। देखो, मिथ्यात्व पहले नंबर में रखा गया, इसका मतलब स्ट्रांग है वो नंबर, पहले जिसका रहता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता, समझने योग्य होता है, और सारा प्रयत्न पुरुषार्थ उसके लिए लगाना पड़ता है प्रारंभ में। मिथ्यात्व पहले नंबर में बंध का कारण है, तो मिथ्यात्व बंध का कारण है और पहले नंबर में रखा, तो इसके बारे में जरा विचार करना है कि इसको पहले नंबर में क्यों रखा, और ये वास्तव में बंद का कारण है भी या नहीं, दोनों बातें समझना है, बंद का कारण है भी या नहीं। तो बंद का कारण यदि है तो कैसे है, और नहीं है तो वो कैसे, दोनों बातें समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप जाना है, मन को एकाग्र बनाए रखना है। इसमें बहुत कुछ रहस्यभूत बातें बाहर आने वाली हैं और उसको पकड़ना है। मिथ्यात्व यदि बंधक है तो बंध के चार भेदों में से किसी न किसी एक में इसको शामिल कराना था। बंध के कितने भेद हैं? चार। कौन कौन से? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध और स्थिति बंध। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध को कराने वाला कौन होता है? योग होता। प्रकृति बंध, बंध के चार भेद हैं। ये चारों भेदों में से ये कौन कौन से बंध किससे होते हैं उसको पहले ध्यान में रखना है। सभी आगम ग्रंथों में यही कहा है कि प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये दोनों योग से ही होते हैं, और स्थिति बंध अनुभाग बंध ये दोनों कषाय से ही होते हैं। स्थिति बंध योग से नहीं होगा, अनुभाग बंध योग से नहीं होगा, और प्रकृति बंध प्रदेश बंध ये कषाय से नहीं होगा, ये योग से ही होगा। तो योग का काम अलग हो गया और कषाय का काम अलग हो गया। कषाय क्या कराती है? जो हम कर्म बांधते समय कर्म को बाहर से पुद्गल परमाणुओं को खींचते हैं, राग द्वेष के काल में आते हैं वो खींच लेते हैं, तो कषाय का काम है उसमें स्थिति डालना, यानी काल मर्यादा को फिक्स करना कि इतने समय तक तुम इस आत्मा को अच्छे बुरे फल देते रहना। यदि पाप को बांधा है तो पाप में भी स्थिति बंद होता है, यानी काल पड़ता है, काल मर्यादा निश्चित होती है, काल फिक्स होता है कि इतने समय तक तुमको बुरे फल देना है, दुख देना है आत्मा को, आत्मा को सुखी नहीं रखना। ये कौन निश्चित करता है? कोई भगवान, ईश्वर, हमारे सुख दुख के कर्ता वही है। ऊपर हाथ ऊपर मत करो, ऐसा करो। ये भीतर बैठी आत्मा, भगवान आत्मा जो कषायवान है, वो जो उसकी भगवान आत्मा की जो कषाय है, वो कषाय जो है उस आने वाले कर्मों में स्थिति डाल रहा है, अनुभाग डाल रहा है, और उस कर्म को ये समझा रहा है कि इस आत्मा को तुम इतने इतने समय तक दुख देते रहना। दुख देने वाला कौन हो गया? कषाय। कषाय दुख देने की क्षमता किसमें डाल देती है? कर्मों में, और वो कर्म आकर के अपने यहां बैठ जाते हैं, और वो कालांतर में उदय में आएंगे आएंगे। यदि हमने बांधा है राग द्वेष करके, कषाय करके, तो कालांतर में तो उदय में आएंगे और फल देंगे। जब फल मिलता है जीवात्मा रोता है, दुखी होता है, और दुखी होता है रोता है उस समय में भी ज्ञान नहीं रहता है कि मैंने कषाय किया था उससे स्थिति पड़ गई थी और वही बीजारोपण वहां हुआ था, इसलिए आज उदय में आकर के उससे दुख मिल रहा है, इसका विचार बिल्कुल नहीं करता। जब दुख मिलता रहता है उस समय में भी यही कहता है, ये सब भगवान का नाटक है, ये हमको ही ज्यादा वो करता है, भगवान हमको ही दुख देता है, हम अकेले हैं क्या संसार में, और कोई नहीं थे क्या? कर्मों को दोष देने के बजाय, अपने आप को दोष देने के बजाय, अपने जो कषाय किया था उससे बंद हुआ था उसको दोष देने के बजाय दोष किसको देता है? भगवान को। कोई कोई भगवान को देता है और कोई कोई क्या करता है, संत पर संत लोग, यानी जो ज्ञान से निकट है, ज्ञानी भी है, समझदार भी है, वो भी ज्यादा संकट का काल जब आता है ना तो भगवान को तो दोष नहीं देते, निमित्त को दोष देते। वो कहते हैं देखो ये व्यक्ति आया और मेरा ऐसा हो गया ये अगर नहीं आता तो ऐसा मेरा नहीं होता। अरे काहे रे यहां क्यों आ गए तुम गुस्सा उस पर करता है, कषाय उस पर करता है और नया कषाय और होने लगा, निमित्त को लेकर के होने लगा, व्यक्ति निमित्त पड़ गया और उसके वजह से इनको कुछ अनिष्ट हो गया। और होना ही था, क्यों होना था, पूर्व में किया था और वो निमित्त के बिना हो नहीं सकता। कर्म तो उदय में आया है, उदयागत कर्म के लिए बस कोई निमित्त चाहिए और निमित्त रूप में वो व्यक्ति आ गया और उसके वजह से हो गया। तो वो कर रहा है या कर्म करा रहा है उनके द्वारा, उनके द्वारा कर्म करा रहा है या वही कर रहा है, वो अपने तरफ से आया क्या? इस व्यक्ति को दुख देना है ऐसा सोचकर अपने तरफ से आया क्या? नहीं आया, परंतु हमारे कर्म ने उनको बुलाया। महाराज आप ये कैसे कहते हो कि कर्म भी बुलाता है? वो तो जड़ वस्तु है, वो कैसे बुला सकता है? आप तो समझते हैं कर्म को जड़ वस्तु, लेकिन आप जब बांधते हैं ना उसको, चेतन कहा है भगवान ने, कर्म भी चेतन है, यानी ज्ञान दर्शन स्वभाव उसमें आया ऐसा नहीं कह रहे। जब जीवात्मा के बांधने के काल में उसमें स्थिति और अनुभव पड़ता है ना, पूरा उसके भीतर फलदायक शक्ति निर्मित होती है, एक मैग्नेटिक शक्ति आती है उसमें। यानी कर्म जीव नहीं होता और जीव कर्म नहीं होता, जीव जीव ही रहता है, कर्म कर्म ही रहता है। लेकिन जब हम कषाय करके उन कर्मों में जब अपना संस्कार डालते हैं, संस्कारोपण बीजारोपण होता है, उस वक्त उसमें एक पावर चार्ज होता है, एक पावर चार्ज होता है। उस पावर को भगवान कहते हैं वो चेतन जैसा काम करेगा आपको, चेतन जीव जैसा काम करता है वैसा काम कर सकता है। देखो मरने के पश्चात हम मर जाते हैं, जिस आयु को और जिस गति को बांधते हैं उसी गति में क्यों जाते हैं? उस समय पता रहता है आपको कि मैं नरक जा रहा हूं या त्रिंच गति में जा रहा हूं, ऐसा कोई पता रहता है? मरने वाले व्यक्ति को बिल्कुल पता नहीं रहता, वो तो केवल मरना जानता है कि ऐसा मर रहा हूं, कहां जा रहा हूं कहां जाऊंगा ये कोई चिंतन। यदि नरकायु का बंध हुआ है तो नरक की ओर मुझे ही चल करके जाना है, कोई पुरुषार्थ नरक जाने का पुरुषार्थ करता है क्या? पुरुषार्थ को रोकना चाहता है मैं नरक नहीं जाऊं नहीं जाऊंगा। अगर जहां भी रहा हो पता चल गया है कि मैं नरक जा रहा हूं, वो ये चाहता है जाते हुए जीव को भी पूछो आप नरक जाना चाहते हो? नहीं, मुझे स्वर्ग ले जाओ लेकिन किधर जा रहा है? नरक जा रहा है। पर स्वयं जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। कौन ले जा रहा है? कर्म ले जा रहा है। तो अचेतन कर्म आत्मा को नरक खींच करके ले जा सकता है, तो कर्म चेतन हुआ क्या? नहीं है? कर्म में जीवात्मा को कुछ करने की, ऐसा मत समझो कि अचेतन द्रव्य भिन्न है चेतन द्रव्य भिन्न है, जीव द्रव्य भिन्न है पुद्गल द्रव्य भिन्न है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके साथ नरक क्यों जा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकता, हम नहीं जाएंगे नरक। हम नहीं जाएंगे उस कर्म से, कहना तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अचेतन द्रव्य हो, पुद्गल द्रव्य कर्म हो, तुम जीव नहीं हो। जीव द्रव्य ही मुझे जब कुछ कर नहीं सकता, तुम क्या कर सकते। कहो उससे, मानेगा? कर्म नरकायु नरक गति, वो कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, तुमको मालूम नहीं है। और दर दर खींच करके ले जाता है और नरक गति में, नरक पृथ्वी में, नरक योनि में जन्म दिला देता है। ये कर्म का काम है, ये किसी ईश्वर का काम नहीं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि कोई इसको कराता होगा, कोई बेटा है इसका, कोई मालिक है, सबको दुख देता है, सुख देता है, नरक में भेजता है, नरक से निकालता है, स्वर्ग भेजता है, स्वर्ग से बुलाता है, मनुष्य बना देता है। ऐसा कोई नहीं, किसी भगवान की शक्ति नहीं, किसी ईश्वर की शक्ति नहीं, किसी देवता की शक्ति नहीं, ये किसी की शक्ति नहीं है। ये शक्ति है कर्म की। और ये कर्म आते कब हैं? हम जब राग द्वेष करते हैं उस काल में आते हैं, और बंधते कब हैं? उसी टाइम में बंधते हैं। उसमें वो पावर आता कब है? उसी काल में आता है जब राग द्वेष करते रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा जो राग द्वेष से छोड़कर निर्मल वीतराग होकर के रह सकता है उसको कर्म नहीं बनते, कर्म भी नहीं बनते। तो कर्म ही नहीं बनते तो कर्म आपको कुछ नहीं करते। तो उस वक्त कहो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता। कर्म बंधेंगे नहीं तो हमको कुछ करेंगे भी नहीं, और यदि कर्म को बांधेंगे तो कर्म भी हमारे लिए कुछ करेंगे। किंतु ये छेड़खानी इधर से होती है कि उधर से होती है? बोलो, कर्म जो बांधते हैं हम, कर्म बांधते हैं क्या कर्म को हम बांधते हैं? हम ये छेड़खानी किस पक्ष से हो रही है, कर्म के पक्ष से या जीव के पक्ष से, इस तरफ से या उस तरफ से? ऐसा तो नहीं है कर्म आ गए हम बंधने आए हैं, आप बांधो, ऐसा तो नहीं कह रहे। हम बंधने आए हैं आप बांधो हमको, ऐसा कर्म तो कहता नहीं। और जीव, हाँ आप आए हैं इसलिए आ जाओ बंध जाओ, ऐसा भी नहीं कहता। केवल बंधो कहने से भी नहीं बंधते वो, कर्म कहते हैं ऐसे नहीं बन सकते हम। हाँ, हम तब बंधेंगे जब हमको आप पावर चार्ज करेंगे, बैटरी चार्ज करोगे तो हम बंधेंगे। तो तुमको कौन सी बैटरी चाहिए, कौन सा चार्ज चाहिए? तो कह कषाय करो, वो जो आया है ना उस पर टूट पड़ो, गुस्सा हो जाओ उसके ऊपर, या उस पर रागी हो जाओ, मोही हो जाओ। वो जो आया है वो तुम्हारा शत्रु है, और तुम चुपचाप ही बैठते, शत्रु को भी गले लगाते हो तुम, मूर्ख हो क्या? तो पर निमित्त को देखकर जीव जब कषाय करता है, कषाय करते समय अज्ञानी ही रहता है। कषाय कौन करता है? अज्ञानी जीव। ज्ञानी जीव कषाय कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जीव अपने अज्ञान भाव से कषाय करता है, और अज्ञान भाव क्या है ये पूछे, ये अज्ञान भाव क्यों है तो कषाय करने से है। अज्ञानी कौन, कषाय करने वाला, कषाय करते समय अज्ञानी, करते समय अज्ञानी और करने से पहले क्या ज्ञानी, नहीं करने से पहले भी अज्ञानी, क्यों, कषाय क्या है यही मालूम नहीं है तो वह अज्ञान तो है। कषाय क्या है यही ज्ञात नहीं है तो अज्ञान तो है, तो कषाय करने से पहले भी अज्ञानी और कषाय करते समय भी अज्ञानी और कषाय करके छोड़ दिया तब भी अज्ञानी। क्यों अज्ञानी, क्योंकि कषाय क्या है इसको विचार नहीं किया, कषाय दुख के दुख दे करके चला गया। ये कषाय क्या है दुख करके दुख दे करके जाने वाला, इसको कषाय करने के बाद भी जानने का कोशिश नहीं किया और कषाय होने से पहले भी जानने का प्रयत्न नहीं किया। और इस प्रकार से हम पहले भी अज्ञानी, वर्तमान में भी अज्ञानी और बाद में भी अज्ञानी। अज्ञान निरंतर अनादिकाल से चला आ रहा है, ये निरंतर रूप से अज्ञान चला आ रहा है। कषाय करते समय अज्ञानी होना स्वाभाविक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर कषाय करने से पहले ज्ञानी रहना यह आवश्यक था, हम वहां ज्ञानी नहीं है। बड़ी दुख की बात तो यही है, कषाय क्या है ये हम समझना नहीं चाहते, ये बड़ी दुख की बात है। कषाय कर रहे हैं ये इसके दुख की बात नहीं है, कषाय तो हो रहा है, क्या करे, हो रहा है, पर क्यों हो रहा है, कषाय करने से पहले कषाय क्या था, कषाय करने से पहले कषाय क्या था इसको जाना नहीं, ये दुख की बात है। अगर जान लिया होता तो अभी कषाय कर रहे ना होते। यही तो अध्ययन है, और भगवान ने इसलिए अनुकंपा की संसारी प्राणियों को, भगवान को उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं थी, उनको कोई उपदेश देऊं ऐसी आवश्यकता नहीं थी, परंतु संसारी भव्य जीवों के लिए कषाय छोड़ने का मार्ग क्यों बताया, वो उनकी अनुकंपा है, उपकार के भाव है। भगवान बनने के बाद मोह नहीं रहता किसी के ऊपर, मोहनी कर्म को ही नष्ट किया है, द्रव्य कर्म नष्ट हुआ है तो भाव कर्म भी कहां से उत्पन्न होगा, द्रव्य कर्म के उदय से ही भाव कर्म होगा। तो मोहनी कर्म के जो पुद्गल परमाणु बंधे हुए थे वो सब कुछ नष्ट हो गए हैं और उनका उदय हो ही नहीं रहा है, तो क्रोध भी नहीं कर सकते, मान भी नहीं कर सकते, माया भी नहीं, लोभ भी नहीं, कषाय रूप भाव होगा ही नहीं। भगवान कषाय मुक्त है, उनके आत्मा के भीतर कर्म भी नहीं है और भाव भी कषाय रूप नहीं होते, फिर भी वो उपदेश देते हैं तो उनके पास दया भाव होती है क्या, उपकार के भाव होते हैं क्या? एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है। देखो, हमसे आपने निवेदन किया तो हमको प्रवचन सुनाने के भाव आ गए, उपकार करने के भाव आ गए, ये तो दया भाव, ये द्रव्य मोहनी कर्म के उदय के बिना, द्रव्य मोहनी कर्म के उदय के बिना भाव मोहनी कर्म का उदय होना, उत्पन्न होना, भाव मोहनी कर्म उत्पन्न होना संभव नहीं। मैंने जब उपदेश देना शुरू किया दया से ही किया, उपकार भावों से ही किया, तो उस समय मोहनी कर्म उदय में था। कौन सा? संज्वलन लोभ, संज्वलन लोभ उदय में था और उस उदय ने मुझे उपकार करने के लिए सहयोग दिया, दया भाव प्रकट करा दिया उसने। दया के भाव मोहनी कर्म के उदय के बिना नहीं होते, द्रव्य मोहनी कर्म का उदय आवश्यक है ही। यदि है तो हम यदि दया करना चाहे तो दया हो सकती है, नहीं चाहे तो उदयागत द्रव्य कर्म भी ये नहीं कहता कि तुमको उपदेश देना ही पड़ेगा, दया करनी ही पड़ेगी। कर्म जबरदस्ती नहीं करता, क्या करेगा? नहीं करेगा। मोहनी कर्म का उदय है, एक उदाहरण, आपके पास 1,00,000 रुपए का बंडल रखा है और एक साहूकार कह रहा है एक गरीब को, तुम गरीब हो, दुखी हो, ले जाओ इसको। ले जाओ कहते ही किस द्रव्य कर्म का उदय होगा? हाँ, लोभ मोहनी कर्म का उदय होगा। अब वो किस गुणस्थान में है? गुणस्थान को भी साथ ले लेते क्योंकि वो अच्छी तरह से घटित होगा। मान के चलो वह सम्यक दृष्टि है और चौथा गुणस्थान वर्ती है, गरीब है। सम्यक दृष्टि क्या गरीब नहीं रहता? रहता है। साहूकार बनना तो सम्यक्त्व के फलस्वरूप वो भविष्य में है, अभी तो गरीब है। पहला मिथ्या तो किया था, कर्म बांधे थे, आज गरीब होकर के जन्म लिया है, धर्म समझ में आया, सम्यक दृष्टि बन गया, मिथ्यात्व का त्याग किया, रास्ते पर लग गया। अब निरंतर पुण्य का बंद कर रहा है, पर बंधा हुआ पुण्य फल देने के लिए, लक्ष्मी सामने आने के लिए समय चाहिए पड़ेगा ना। तो अभी जो बंद रहा है वो कर्म तो भविष्य में उदय में आने वाला है, इतना जल्दी नहीं आएगा वो। तत्काल बंद कर तत्काल फल नहीं देता कोई कर्म, उसके लिए बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बीज भी यदि किसान अभी बोता है तो 1 घंटे के बाद उगता नहीं हो, उसके लिए टाइम अपेक्षित रहता है। पानी मिलने पर, खाद मिलने पर, सूर्य प्रकाश मिलने पर, धीरे 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 वो एक समय है, उतना समय लगता ही है, फूलेगा और आत्मा उसमें कोई ना कोई आत्मा आकर के जन्म लेगा, तब वो अंकुरित होना शुरू होगा। कर्म भी जब अपने आत्मा के भीतर बंधते हैं और बीजारोपण हो जाता उनका, पुण्य का कहो या पाप का कहो किसी का भी, तो एकदम उदय में, एकदम 1 घंटे के बाद ही उदय में आकर के फल नहीं देता। हाँ, ये तुरंत बंद कर तुरंत फल देने वाला कर्म भी होता है, लेकिन सामान्य जीवों में नहीं होता, वो विशिष्ट जीव चाहिए। यानी जो जितना महान होगा, संयमी होगा, ज्ञानी होगा, मंद कषायी होगा, कषाय विजेता रहेगा, उनको पुण्य कर्म भी अभी बंधेगा और तुरंत कुछ ही समय में फल देना शुरू कर देगा, उसमें ज्यादा काल मर्यादा नहीं रहती फल देने का। जैसे अरहंत भगवान साता वेदनी कर्म का उदय तुरंत बंद तुरंत करते हैं और अंतर मुहूर्त भी नहीं रह पाता, आता है कर्म फल देकर के जाता है, आता है कर्म फल देकर के जाता है। ये साता वेदनी कर्म की देन, पुण्य कर्म अरहंत भगवान को भी बंधता है, पर उनको आता है तुरंत फल दे करके जाता है। हम लोगों को ऐसा नहीं होता क्योंकि हम कषायी हैं और वो कषायी नहीं है। कषाय होने से उसमें स्थिति यानी काल मर्यादा का जो चार्जिंग होता है, कितने समय बाद फल देना, वो चार्जिंग अधिक रहता है कषायवान जीव के पास। और कषाय रहित जीव के पास जो चार्जिंग होता है वो चार्जिंग होता ही नहीं, पुण्य आता है, फल देता है, निकल जाता है। इसलिए कहते हैं अरहंत भगवान को भूख प्यास नहीं लगती, असाता वेदनी कर्म का भी उदय है, परंतु साता वेदनी कर्म इतना उत्कृष्ट क्वालिटी वाला आकर के बंध रहा है, वो जब फल देता तब असाता वेदनी जो पूर्व में बंधा हुआ रहता है, वर्तमान में तो बंधते नहीं, वो कषाय न होने से असाता वेदनी कर्म का बंध तो कर ही नहीं सकते। पूर्व में बंधा हुआ जो असाता वेदनी कर्म है वो उदय में आकर के जब फल देता है, फल देने को तो आएगा, पूर्व में बंधा है तो फल देने को तो आएगा, नया बंध नहीं होगा। असाता वेदनी कर्म का बंध तो केवल छठे गुणस्थान तक मुनि महाराज को होता है, सप्तम गुणस्थान में भी नहीं होता ये असाता वेदनी कर्म का बंध, मुनि महाराज को नहीं होता सातवें में, ये केवल छठे गुणस्थान तक। लेकिन तो फल कब तक देगा? फल देने के लिए तो वो तेरहवें गुणस्थान में भी जाकर के उदय में आकर के फल दे सकता है वो। तो अरहंत भगवान को असाता वेदनी कर्म का उदय है और उनको उसके उदय में भूख तो लगनी चाहिए। हम लोगों को जो भूख लगती है, खाना खाने की इच्छा होती है, वो असाता वेदनी कर्म की देन है। पीड़ा होती है एक तरह से पेट में, खाने की फिर इच्छा होती है, इच्छा होना मोहनी कर्म, वेदना होना असाता, दुख पैदा करना, एक वेदना पैदा करना पेट के भीतर, वो असाता वेदनी कर्म। तो असाता वेदनी कर्म के उदय में हमको तो वेदना होती है, अरहंत भगवान को असाता वेदनी कर्म का उदय होते हुए भी वेदना नहीं होती। क्यों नहीं होती? साता का उदय इतना तेज है, ये तो जीरो बल्ब और वो सर्च लाइट, सर्च लाइट पर जीरो बल्ब अपना प्रभाव क्या दिखा सकेगा, ऐसा इतना फर्क है। असाता वेदनी कर्म जो फल देने के लिए आया है वो जीरो बल्ब जैसा छोटा रह जाता है, और ये सर्च लाइट का साता वेदनी कर्म, क्योंकि निष्कषाय अवस्था में वीतराग अवस्था में जो पुण्य कर्म का बंध होता है उसका अनुभाग इतना मीठा होता है, इतना मीठा होता है, अमृत से भी ज्यादा मीठा। और फिर ऐसे असाता वेदनी साता वेदनी कर्म का उदय आने पर असाता कुछ अपना करामत बता नहीं सकता जीव को। तो अरहंत भगवान को वेदना नहीं होती, और वेदना नहीं होती तो काय को खाएंगे, वो भोजन काय को करेंगे? अरहंत भगवान को भूख भी नहीं और प्यास भी नहीं, इसी कारण से भूख प्यास नहीं अरहंत भगवान को। किस कारण से? साता का जोर उदय है इसलिए, असाता फल नहीं दे पाता इस कारण से भूख नहीं लगती, और खाने की जो इच्छा होना चाहिए वो इच्छा भी नहीं होती उनको। क्यों नहीं होती? क्योंकि साता वेदनी दुख ही पैदा नहीं कर रहा है, तो उसको शांत करने के लिए कोई इच्छा होना चाहिए, वो इच्छा भी नहीं हो रही है। एक तो वो मंद है, असाता वेदनी कर्म मंद पड़ गया तेज साता वेदनी कर्म के उदय के कारण, और जो मोहनी कर्म है वो मोहनी कर्म तो सत्ता से ही खाली हो चुका है, सत्ता भी खाली, और मोहनी कर्म का उदय नहीं होगा तो रागादि भाव भी नहीं होंगे, इच्छा भी नहीं होगी भोजन करने की इच्छा, मोहनी कर्म के उदय के बिना भोजन करने की इच्छा नहीं होती। और हम लोगों को जब इच्छा होती है, सामान्य जीवों को, तो देखिए आप इच्छा कैसी होती है, हम पहले हमको वेदना होती है, फिर उस वेदना को दूर करने के लिए इच्छा होती है, पहला असाता वेदनी कर्म सताता है, वेदना पैदा करता है पेट में, फिर उस वेदना को मिटाने के लिए हम भोजन ढूंढने की कोशिश करते हैं और इच्छा करते हैं। तो हम इच्छा जो कर रहे हैं ये मोहनी कर्म का उदय है इसलिए इच्छा कर रहे हैं, और मोहनी कर्म का उदय नहीं होता हम भी इच्छा नहीं करते, और मोहनी कर्म का उदय ना होता तो इच्छा तो करते ही न थे, और उस काल में क्या होता, मोहिनी कर्म का ही उदय नहीं है तो वीतरागी है, और वीतरागी को पुण्य बहुत तेज होता है, सर्चलाइट जैसा पुण्य होता है, और असाता वेदनी कर्म जो रहता है वो मंद पड़ जाता है वीतरागता के कारण। इसलिए हमको भी खाने की इच्छा नहीं हो सकती थी, परंतु हम मोहिनी कर्म के उदय वाले हैं ना, इसलिए वेदना होगी और वेदना के प्रतिकार के लिए हम इच्छा भी करेंगे और भोजन करके उस क्षुधा वेदनी को मिटा करके हम रेस्ट लेंगे। हम लोगों की परिस्थिति ऐसा है, भूख लगने में कितने सारे काम करते हैं, कर्म काम करते हैं, कितने सारे कर्म काम करते हैं। देखो, एक तो असाता वेदनी कर्म और साता वेदनी कर्म, हमारा साता वेदनी कर्म मंद पड़ जाता है, हमारी वेदना को वो शांत नहीं रख पाता, इतना पावरफुल सर्चलाइट हमारा नहीं है, पुण्य में जोर नहीं है, ताकत नहीं है, इसलिए असाता जोर मारता है। असाता की शक्ति ज्यादा हो जाती है और साता की शक्ति कम पड़ जाती है। और कौन सा कर्म? मोहिनी कर्म। अब मोहिनी कर्म है, साता वेदनी साथ नहीं दे रहा है, असाता वेदनी बिल्कुल वेदना पैदा कर रहा है, तो वेदना की अनुभूति होने लगती है, तो तुरंत उसको बुझाने के लिए हम इधर उधर कुछ करने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। तो ये इच्छा हो गई, और इच्छा ये मोहिनी कर्म के देन। ये मोहिनी कर्म जब तक उदय में रहता है तब तक पुण्य कर्म, जो क्वालिटी के पुण्य कर्म है, प्योर पेट्रोल वाले, राकेल मिक्स पेट्रोल वाले नहीं, प्योर पेट्रोल वाले जो पुण्य परमाणु हैं, उनका बंध, उनका आश्रय होने के लिए मोहिनी कर्म को ही पहले हराना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। जो मोहिनी कर्म को जीता वो भगवान बन गया, चलता फिरता भगवान है। और यही हम लोगों के हाथ से नहीं हो रहा है। संयम धारण करो, बाद में देखा जाएगा, अभी क्या, जीवन तो बहुत बड़ा पड़ा। ये किस कर्म के उदय में ऐसे भाव आते हैं? मोहिनी कर्म। प्रमाद किस कर्म के उदय से होता है? मोहिनी कर्म। आलस्य किस कर्म के उदय से आता है? मोहिनी कर्म। क्रोध किस कर्म के उदय से आता है? इच्छा किस कर्म के उदय से होती है? अहंकार किस कर्म के उदय से होता है? मायाचारी किस कर्म के उदय से होती है? ये सब मोहिनी कर्म। ये मोहिनी कर्म कंट्रोल में आ गया तो समझ लेना, आपके लिए जो पुण्य कर्म बंधते हैं उसको कंट्रोल में लेने से वो पावरफुल वाले होते हैं, फिर वो पावरफुल वाले कर्म आपको भूख प्यास भी नहीं करा देंगे, वेदना नहीं होने देंगे। कैसी स्थिति बनेगी? ऐसी स्थिति बनेगी जैसे आप बीमारी में आपकी स्थिति रहती है, क्यों खाओ ना थोड़ा, बिल्कुल इच्छा नहीं, ये भूख नहीं है, बिल्कुल भूख भी नहीं है, भूख भी मर गई है। बीमार अवस्था में व्यक्ति को भोजन दे तो भी नहीं खाता, एक ग्रास खाओ ना, नहीं बिल्कुल इच्छा नहीं, मुंह कड़वा है। तो वो असाता वेदनी कर्म दूसरी जगह काम कर रहा है, बुखार ला रहा है, बुखार ला रहा है, मुंह को कड़वा बनाया रखा है, कड़वा बना करके मुंह में दुख दे रहा है, दुख भोगो, इस दुख को, कड़वेपन को भोगो और दुखी हो जाओ। और मुंह को मीठा चाहता हुआ भी कड़वा अनुभव कर रहा है आत्मा। ऐसा वो तकलीफ में रहता है। उस समय भूख की इच्छा इसलिए नहीं होती क्योंकि शरीर डिस्टर्ब होता है, अस्वस्थ रहता है, तो अस्वस्थ रहना अशुभ नाम कर्म का उदय, असाता वेदनी का तीव्रोदय, साता वेदनी का बिल्कुल मंद मंदोदय और मोहिनी कर्म का तीव्रोदय क्या मंदोदय बीमारी के कारण बीमारी के काल में भूख की अपेक्षा देखो तो खाने की तो इच्छा होनी चाहिए लेकिन खाने की इच्छा मर गई है तो ये तो तीव्र उदय खाने की इच्छा को ही मार दिया किसने असाता वेदनी ने मार दिया ये पाप का उदय है तीव्रोदय है क्या मंदोदय असाता का तीव्रोदय और मोहनी कर्म का बिल्कुल मंदोदय खाने की इच्छा नहीं पर स्वास्थ्य पाने की इच्छा है क्या नहीं जल्दी ठीक हो जाऊं ये तीव्र इच्छा है क्या नहीं है तो ये तीव्रोदय एक तरफ स्वास्थ्य पानी की इच्छा तीव्र है भाव तीव्र है लेकिन कर्म तीव्र नहीं कर्म तीव्र उसके लिए है कर्म तीव्र उसके लिए है कौन सा कर्म असाता वेदनी कर्म तीव्र उसके लिए है जो आपकी अस्वस्थता को बढ़ाने में और वेदना कराने में उसके लिए तो तीव्र है वो और ये तीव्र हो गया तो साता वेदनी मंद ही पड़ेगा ये सार्च लाइट बन गया और वो जीरो लाइट बन गया साता वेदनी ये कर्म का खेल हमारे जीवन में सतत चलता ही रहता है कर्म के फलों को भोगने से हम दूर कब हैं निरंतर भोग रहे हैं कर्म हमको छोड़े हैं क्या कभी नहीं छोड़े हैं तो संसार अवस्था में देखो ऐसा कह सकते हैं संसारी जीव को भी संसार अवस्था में कर्म एक द्रव्य है और जीव भी एक द्रव्य है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता कर सकता है क्या नहीं कर सकता कर्म आत्मा को कुछ कर सकता है क्या नहीं कर सकता आयु कर्म भी बंधा हुआ है वो भी जड़ द्रव्य ही है आत्मा को कुछ कर रहा है क्या नहीं कर रहा क्या कर रहा है काम बांध के रखा है जब तक मैं हूं तुम यहीं रहोगे आयु कर्म कहता है और मैं चला गया तो तुम भी चले जाओ और मेरे जाने से पहले मैं अपने एक और बंधु को ला करके यहां बिठा देता हूं उनके साथ जाना उनके साथ जाना और ये काम मैं नहीं करूंगा मेरा तो बंधन में रखने का काम है मेरा और एक बंधु है वो करा देगा वो कौन मोहिनी कर्म आयु कर्म का बंध मोहिनी कर्म के उदय के काल में ही होता है और रागादि भावों के काल में होता है जीव राग सहित हो उसी काल में आगामी आयु कर्म का बंध करेगा जीव राग रहित हो अप्रमत्त गुण स्थान में हो वीतरागी हो ध्यान अवस्था में हो वो आयु कर्म को बंद नहीं कर सकता हां राग सहित हो तो ही आयु कर्म का बंद होगा सराग सैमा सैमा अकाम निर्जरा बाल तपांश दैवस्य देवायु का बंद नरकायु का बंद तो नीचे गुणस्थान में भी है नीचे के गुणस्थानों में नरकायु का बंद पहले में ही होता है एक ही गुणस्थान में त्रिरंचायु का बंद दो गुणस्थान में होता है पहले में और दूसरे में मनुष्यायु का बंध पहले में, दूसरे में, चौथे में, इन तीन गुण स्थानों में बंध होता है, आगे नहीं। मनुष्यायु का बंध तीन गुण स्थान में होता है। और देवायु का बंध पहले गुण स्थान से सातवें गुण स्थान तक होता है, पर सातवें गुण स्थान वह गुण स्थान जहां प्रवृत्ति है, विकल्प है, राग है, ऐसा भी सातवां गुण स्थान है। राग है, अबुद्धिपूर्वक राग है, राग है, बुद्धिपूर्वक राग है। सप्तम गुण स्थान में दो परिस्थितियां हैं, छठे गुण स्थान में बुद्धिपूर्वक राग है। इस काल में तो देवायु का बंध होगा ही होगा छठे गुण स्थान में, और वृत्तियों को केवल देवायु का ही बंध होता है। वृत्ति मुनि या अनुवृत्ति श्रावक या सम्यक दृष्टि अग्रत सम्यक दृष्टि, उनको भी यदि सम्यक तो प्राप्त करने के बाद कोई आयु का बंध हो रहा है तो चार आयु में से तीन आयु का तो बंध नहीं करेगा, नरकायु, तिरेंचायु और मनुष्यायु। एक ही आयु का बंध करेगा, कौन सा? देवायु। देवायु का ही बंध करता है। मुनि महाराज देवायु का ही बंध करेंगे, लेकिन छठे गुण स्थान में भी करेंगे, सप्तम गुण स्थान में भी करेंगे, जहां पर बुद्धिपूर्वक राग है। छठे में बुद्धिपूर्वक राग तीव्र है और सप्तम में बुद्धिपूर्वक राग मंद है, और दोनों ही प्रशस्त है। ये प्रशस्त राग के काल में देवायु का बंध होता है, और देवायु का बंध का संबंध राग से जुड़ा हुआ है। तो सप्तम गुण स्थान में दो परिस्थितियां हैं, एक राग सहित विभाग और एक राग रहित विभाग। जैसे मैं उपदेश दे रहा हूं, इस समय मुझे देवायु का बंध हो सकता है क्योंकि राग सहित हूं, प्रशस्त राग है ना, उपदेश देना प्रशस्त राग, और इस समय राग सहित मुझे किस आयु का बंध हो सकता है? देवायु का। तिरेंचायु का नहीं होगा, मनुष्यायु का नहीं होगा, नरकायु का नहीं होगा, नरकायु का बंध नहीं होगा, तो देवायु का बंध करूंगा। पर उपदेश देते समय या प्रवृत्ति के काल में, विकल्प के काल में, राग रहित अवस्था में ही करूंगा, जब भी करूंगा प्रवृत्ति के काल में करूंगा। पर जब हम मैं ध्यान में रहता हूं, प्रशस्त राग भाव को भी हटा करके मैं ध्यान अवस्था में रहता हूं, उस समय किसी भी आयु का बंध मैं नहीं करूंगा। वीतराग संयम के साथ किसी भी आयु का बंध का विधान नहीं है, सराग संयम के साथ, सराग रत्नत्रय के साथ आयु कर्म का बंध है, आयु कर्म का बंध हो सकता है। तो ये हो गई अपनी बात कि कर्म का बंध कब होता है और कब नहीं होता। तो यहां आयु कर्म मतलब यूं समझो कि हम एंड टाइम में है, समाधि मरण के अवस्था में है, और समाधि मरण के अवस्था में मुनि को ध्यान अवस्था में मरण करना चाहिए, ये कहा। किस अवस्था में? ध्यान अवस्था में। और ऐसे जो मुनि ध्यान अवस्था में मरण करे और उनको आयु कर्म का बंध ना हो, पहले से भी नहीं बांधा है और वर्तमान में भी नहीं बांध रहा है, और ध्यान अवस्था में मरण हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, पहला भी नहीं बांधा है, अभी भी नहीं बंध रहा है, और ध्यान अवस्था में मरण हो, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा यदि होगा ना वो मोक्ष ही चला जाएगा। जो आयु कर्म को नहीं बांधता वो मोक्ष जाता है, आगामी आयु कर्म तो अभी तक तो बांधा नहीं, और ये आयु कर्म तो समाप्त होने जा रही है, तो कहां जाएगा वो? मोक्ष ही जाएगा वो। तो ऐसा किसको होता है? अरिहंत भगवान को होता है, मुनियों को नहीं, मुनियों को नहीं होगा। और मरण जो होता है वो देखो, पहले गुणस्थान में होता है, दूसरे में होता है, तीसरे में नहीं होगा, छठे चौथे में होता है, पांचवे में होता है, छठे में होता है, सातवें में होता है, आठवें में होता है, नौवें में होता है, दसवें में होता है, ग्यारहवें में भी होता है, फिर बारहवें और तेरहवें में नहीं होता, चौदहवें में होता है। यानी 14 गुणस्थानों में से 3 गुणस्थानों में मरण नहीं है, बिल्कुल मरण नहीं है, और न ही इनकी इन गुणस्थानों के साथ जन्म है, जन्म भी नहीं है और मरण भी नहीं है। कौन कौन से गुणस्थान? तीसरा नंबर का, 12वें नंबर का और 13वें नंबर का। इन 3 गुणस्थानों में मरण नहीं है और न ही जन्म है, दोनों नहीं है। फिर मरण तो पहले गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक, तीसरे को छोड़कर 11वें गुणस्थान तक मरण है। तो कोई मुनि श्रेणी चढ़ करके आठवें गुणस्थान से श्रेणी चढ़ना होता है, तो श्रेणी चढ़ करके मतलब ध्यान अवस्था तो सप्तम गुणस्थान में ही रहता है, ध्यान अवस्था में बैठे हैं। यहां पर तो कोई आयु कर्म का बंध नहीं हो सकता क्योंकि नीतराग अवस्था है, नीचे होते तो सराग अवस्था होती, आयु कर्म का बंद होने का चांस था, परंतु हमको किसी भी प्रकार का आयु का बंद नहीं हुआ है और हम श्रेणी में चढ़ चुके हैं। किस श्रेणी में? श्रेणी भी दो प्रकार की, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। हम उपशम श्रेणी में चढ़े हैं, तो उपशम श्रेणी में चढ़े हैं और कोई आयु कर्म का बंध भी नहीं किया है, और मरण तो 11वें गुणस्थान तक हो सकता है, हो ये नियम नहीं पर हो सकता है, तो आयु कर्म का अगर बंध किए बिना हम उपशम श्रेणी चढ़ चुके हैं तो नीचे आएंगे क्या? नहीं आएंगे,
आएंगे,
पर 11वें गुणस्थान में मरण हो सकता है क्या? हो सकने की संभावना रहती है, लेकिन होगा क्या पूछ रहे हैं हम। किसी भी आयु कर्म को हमने बांधा नहीं और श्रेणी चढ़ लिए तो मरण होगा क्या?
नहीं,
नहीं होगा। क्यों? आयु कर्म को बांधा ही नहीं है तो यहां मरण भी नहीं होगा। नीचे तो आने का नियम है ना, परंतु उपशम श्रेणी चढ़ने वाला आयु कर्म को बांध करके ही चढ़ता है, ऐसा नियम नहीं। चढ़ भी बांध करके चढ़ भी सकता है और नहीं भी चढ़ सकता, ऐसा दोनों नियम है। आयु कर्म को यदि बांध करके चढ़े हो तो मरण हो सकता है, और बांधे ना हो तो मरण भी नहीं होगा। बांधे ना हो तो मरण नहीं होगा। क्यों? बांधे नहीं हो और मरण हो गया तो उपशम श्रेणी में मरण हो गया तो मोक्ष चला जाएगा, मोक्ष ही चला जाएगा फिर तो। आयु कर्म नहीं बांधा था और ये आयु कर्म श्रेणी में चढ़ने के बाद मनुष्य आयु कर्म खत्म हो गया तो मोक्ष नहीं जाएगा क्या? जाएगा, लेकिन उपशम श्रेणी में मरने पर किसी को मोक्ष नहीं होता, ये मालूम है क्या? नहीं मालूम है। मरण उनका होगा ही नहीं उपशम श्रेणी में, जिन्होंने आयु कर्म का बंद किए बिना उपशम श्रेणी चढ़े हैं उनका मरण होगा ही नहीं। और ऐसे मुनि महाराज यदि उपशम श्रेणी चढ़ेंगे तो वही मुनि महाराज उपशम श्रेणी चढ़ेंगे जिनको अंतर मुहूर्त से ज्यादा आयु कर्म शेष है, मनुष्य आयु का स्थिति काल अंतर मुहूर्त से ज्यादा शेष हो तो ही उपशम श्रेणी चढ़ना संभव है, नहीं तो उपशम श्रेणी चढ़ेगा नहीं। क्यों? ऐसा क्यों नियम? तो अंतर्मूर्त से कम आयु हो और उपशम श्रेणी चढ़ लिया, और उपशम श्रेणी के श्रेणी को चढ़ करके आने में भी अंतर्मुहूर्त काल चाहिए, और उससे छोटा काल आयु कर्म है, आयु कर्म का काल है भुजमान आयु, यानी वर्तमान की आयु, मनुष्य आयु, वो अंतर्मुहूर्त से कम है। और ऐसी परिस्थिति में उपशम श्रेणी चढ़ गया तो मरण तो श्रेणी में ही हो जाएगा ना, ऐसा श्रेणी में हो जाएगा तो मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। अन्य कर्म कहते हैं हम सब के रहते हुए यह आयु कर्म साथ समाप्त नहीं हो सकता, नहीं है ना, नहीं है। उपशम श्रेणी से मोक्ष क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि सत्ता में सभी कर्म रहते हैं, मोहिनी कर्म सभी रहते हैं, और मोहिनी कर्म को सत्ता में रख करके क्या वहां मरण कर मोक्ष जाएगा? पहले तो मोहिनी कर्म को नष्ट करना पड़ेगा, और उपशम श्रेणी में कोई मोहिनी कर्म नष्ट हुआ होता भी नहीं और होगा भी नहीं। ऐसी परिणामों की विशुद्धि बढ़ाते बढ़ाते शुक्ल श्लेषा और शुक्ल ध्यान के बल पर ग्यारहवें गुणस्थान में पहुंच जाते। मोहिनी कर्म को दबा दबा करके, क्षय करते हुए नहीं, दबा दबा करके पहुंच जाते। दबाया है तो नीचे आना ही पड़ेगा, क्षय किया हो तो आने की जरूरत नहीं। तो क्षय करना, क्षय करने वाला उपशम श्रेणी नहीं चढ़ता, वो क्षपक श्रेणी चढ़ता, क्षपक श्रेणी चढ़ता है। और जो क्षपक श्रेणी चढ़ता है उस मुनि महाराज के लिए कोई भी आयु कर्म का बंद रह नहीं सकता, कोई होता नहीं। क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले को यदि क्षपक श्रेणी चढ़ना है तो किसी भी प्रकार के आगामी आयु कर्म का बंद किया हुआ वह नहीं रहता, क्षपक श्रेणी में चढ़ने वाला। और यदि उस व्यक्ति को आयु कर्म का बंद हो गया तो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं चढ़ेगा? आयु कर्म को लेकर के क्षपक श्रेणी चढ़ा तो उनका मरण तो चौदहवें में जाकर के ही होने वाला है, बीच में तो होना नहीं है। और फिर आगामी आयु कर्म को बंद करके चौदहवें गुणस्थान में मोक्ष जाएगा क्या? दिवाली को भी बांधेगा और मोक्ष जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले मुनि महाराज तो किसी भी आयु कर्म का बंद करते ही नहीं, और आयु कर्म उनको बंद हो सकता है, करना चाहे तो, करना चाहे तो हो सकता है, यदि किया तो क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ सकते, उपशम श्रेणी चढ़ सकते। यदि किया तो उपशम श्रेणी चढ़ सकते, क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ सकते। और नहीं किया है तो देखो, जब तक नहीं किया है तब तक क्या करना पड़ेगा? आयु कर्म, आगामी आयु कर्म को बंद करने से पहले ही क्षपक श्रेणी चढ़ गए तो बहुत अच्छा, नहीं चढ़े तो देवगति में भी जा सकते हैं आयु कर्म का बंद करके। जैसे मान लो कोई वज्रषभ नारासनधारी है, उस भाव से मोक्ष जा सकते हैं क्या? नहीं, वो जा सकते हैं, पहले सनंदारी जा सकते हैं कि नहीं? मोक्ष जा सकते हैं। फिर क्या करना पड़ेगा? आगामी आयु को बंद करने से पहले क्षपक श्रेणी चढ़ना पड़ेगा। आयु कर्म का बंद कब होता है? तो त्रिभाग में होता है, जो टोटल आयु रहती है उसका तीन हिस्सा करो, दो हिस्से में तो होने वाला नहीं है। तीसरा हिस्सा जब स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में जो बचा है तीसरा हिस्सा स्टार्टिंग में होता है, तीसरा हिस्सा जब शुरू होने वाला है उसके अंतर्मुहूर्त काल प्रारंभिक जो होता है अंतर्मुहूर्त काल उसमें होता है, वो पहला चांस है। वहां भी नहीं हुआ तो पुनः वो जो टोटल बचा हुआ तीसरा हिस्सा है उसमें तीन भाग करो, और पहले दो भाग में नहीं होगा, और दो भाग व्यतीत होने तक फिर कुछ भी नहीं होगा, वो निकलेगा धीरे धीरे, निकल गया और तीसरा हिस्सा आ गया, उसके पहले अंतर्मूर्त में हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो दूसरा चांस भी टल सकता है, तो ऐसे कितने चांस टल सकते हैं? आठ चांस आते हैं और आठों चांस टल सकते हैं, नौवा चांस टलेगा नहीं, क्योंकि उस समय तो आयु कर्म खत्म ही होने को आता है, लास्ट एंड टाइम में रहता है, वो टलेगा नहीं। अब ये आठ चांस में उस आयु कर्म को हर बार तीन तीन भाग करते जाना, दो भाग में नहीं होता तीसरे भाग में हो सकता है, दो भाग में नहीं होता तीसरे भाग में हो सकता है, जिसमें हो सकता है वो अगर टल गया तो नहीं होगा। काउंट कैसे करने का? अपनी अपनी आयु को अगर आप पता लगाते हैं तो काउंट भी कर सकते हैं, पर आयु को तो पता नहीं लगा सकते। हमारी आयु कर्म कितने साल तक फल देने वाला है, यानी हमारा जीवित काल कितना समय का है, ये अगर पता लग गया तो फिर काउंट भी कर सकते हैं। पर पता लगाने का कोई उपाय है क्या आज? है?
अभी वर्तमान में 120 साल का पुरुष का पकड़ से।
हाँ, जो आयु कर्म आपका टोटल बंधा हुआ है वो कितना है? हाँ, वही पूछ रहे हैं हम, वो मालूम नहीं है ना। मालूम नहीं है इसलिए तीन भाग कैसे करोगे? तीन भाग करना भी संभव नहीं। मालूम होता तो हम तीन भाग करते, जैसे 60 साल है, टोटल 60 साल की उम्र को बांध करके हम यहां आए हैं, तो उसमें तीन भाग करो तो 30 30 के हो गए, तो 30 30 के तीन खंड हैं, 20 20 के तीन खंड हैं, 20 20 के तीन खंड हैं, तो पहले के दो खंड में तो आयु का बंध नहीं होना, हो ही नहीं सकता। तो हम 60 पता चले तो हम गारंटी ले सकते हैं कि 40 साल तक मेरे आयु कर्म को बंद होना नहीं है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना अभी। और इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, इसलिए यह करना चाहिए कि आयु कर्म तो हमको कितना बंधा हुआ है मालूम नहीं, इसलिए हमको अच्छा पुरुषार्थ तो निरंतर ही करना चाहिए। मालूम नहीं है तो अच्छा पुरुषार्थ निरंतर करना चाहिए, और निरंतर पुरुषार्थ सदा रहेगा तो देवायु का ही बंध होगा। हम तीन आयु कर्म के बंध से बचेंगे, नरक नहीं जाएंगे, तिरंजगति नहीं जाएंगे, मनुष्य नहीं बनेंगे, देवायु का बंध करेंगे। पर देवायु का ही बंध क्यों कर रहे हैं आप, मनुष्य आयु का बंध क्यों नहीं? अच्छा काम करो और मनुष्यों मनुष्य आयु का बंध करो ना, मनुष्य बनना क्यों नहीं चाहते आप, देव बनना ही चाहते? ऐसी चाह है क्या कि मुझे स्वर्ग जाना है? मैं चाह भी नहीं करना, देव आयु की चाह भी नहीं करना, न मनुष्य आयु की चाह, क्योंकि ये चारों ही आयु कर्म का बंधन, संसार है क्या मोक्ष है? संसार है। तो आप अच्छे परिणाम रखो, देवायु का बंध तो स्वाभाविक रूप से होगा, वो जब परिणाम अच्छे रहेंगे बुरे नहीं रहेंगे तो कौन सा आयु का बंध होने वाला है? देवायु का, वो तो स्वाभाविक रूप से होना ही है, गारंटी है वो। इसलिए अच्छे परिणामों को रखते हुए ये मत सोचना कि मुझे देवायु का बंध करना है, मुझे देवायु का बंध करना है। ये विकल्प रखने की जरूरत है क्या? नहीं है। रास्ते चलते हुए प्रति कदम ये भावना करने का, विकल्प करने की आवश्यकता है क्या? मुझे मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अरे घर ही जा रहे हो ना, घर ही जा रहे हो तो मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। विकल्प करने के प्रति कदम में विकल्प करने की आवश्यकता रहती है? नहीं है। इसलिए अच्छे परिणामों को जो निरंतर रख रहा है उनको एक बार बार विकल्प करने की या आशा करने की जरूरत नहीं कि मुझे देवगति जाना है। तुमको देवगति में ही ले जाएंगे वो परिणाम, अच्छे परिणाम। परिणाम स्वयं ले जा रहे हैं और वे नियम से देवायु का बंध करा रहे हैं। तो हम ये कह रहे थे कि छपक श्रेणी चढ़ने वाले कोई मुनि महाराज हैं तो उनको उनका सहनन तो पहला सहनन चाहिए, और वो यदि छपक श्रेणी नहीं चढ़ेंगे तो देवगति में भी जा सकते हैं। और चढ़ जाएंगे तो मोक्ष भी जा सकते, छपक श्रेणी चढ़ जाएंगे तो दोनों संभावना रहती है। तो उनके पास भी अपना आयु कर्म है और तीन हिस्सा वो भी करेंगे, मान के चलो कि वो अवधि ज्ञानी ही है, आयु कर्म कितना है ये भी पता है और कौन सा मैं गति में जाऊंगा ये भी पता है, सभी अंदाज लगा सकते हैं, वो पता लगा सकते हैं। तो वो मुनि महाराज क्या करेंगे, देव गति में भी जा सकते ये भी योग्यता है और मोक्ष भी जा सकते ये भी योग्यता है। तो वो पुरुषार्थ जो करेंगे छपक श्रेणी के लिए ही ज्यादा जल्दी चढ़ने का कोशिश करेंगे ना, क्या उपशम श्रेणी चढ़ने का कोशिश करेंगे, क्या छपक श्रेणी को चढ़े बिना हमारा तो वज्रोक्षम नारासनन है मोक्ष तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ऐसा कह करके क्या छठे सप्तम गुण स्थान में ही बैठ जाएंगे, अगर वहीं बैठेंगे तो देवगति में जाना ही पड़ेगा, देवगति में जाना पड़ेगा, मजबूर हो जाएगा वो देवगति में जाने के लिए, पुरुषार्थ नहीं करेगा तो यहां पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो ऐसे मुनि महाराज पुरुषार्थ क्या करते हैं सुनो, मुझे देवगति में नहीं जाना है और चार गति में भ्रमण नहीं करना है, तो वज्रषभ नारायण सनंदधारी है, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, क्षायिक चारित्र प्राप्त करके छपक श्रेणी चढ़ जाएंगे, जल्दी चढ़ने का कोशिश करेंगे और बार बार वीतराग रहने का कोशिश करेंगे, क्योंकि सराग अवस्था में देवायु का बंद होना संभव है, इसलिए ऐसा तो कुछ नहीं करना है, वो बार बार राग छोड़ करके वीतराग ध्यान में तल्लीन रहेंगे। ऐसे मुनि महाराज जो देवगति में भी जा सकते हैं और मोक्ष भी जा सकते हैं, ऐसे दोनों की संभावना रहती है, वे मुनि महाराज ज्यादा से ज्यादा वीतराग संयम की साधना करते हैं, वीतराग संयम की साधना करते हैं, ज्यादा राग अवस्था में अटकते नहीं, राग में उतने ही समय जाते हैं जितना समय अपन लोग जाते हैं सामायिक करने के लिए, थोड़ा समय सामायिक के लिए जाते हैं और पूरा समय यहीं रहते हैं, है ना, हमारा उल्टा है उनसे, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते, थोड़ा समय राग में जाना है क्योंकि देवायु की बंद की संभावना है राग में जाने से, इसलिए उस आयु कर्म के बंद से बचने के लिए वो बार बार वीतराग अवस्था में लीन रहते हैं, ज्यादा मौन ही रहते हैं, ज्यादा आत्म साधना करने लगते हैं, बोलते नहीं, ज्यादा भी चलते फिरते नहीं, जब देखो तब ध्यान, जब देखो तब ध्यान, जब देखो तब वीतराग, जब देखो तब ज्ञाता दृष्टा भाव, ऐसा करते रहते हैं वो, किससे बचने के लिए, देवायु के बंद से बचने के लिए, अन्यथा ध्यान कम करेंगे और प्रवृत्ति में ही ज्यादा रहेंगे तो आयु कर्म कब बंदे का कोई भरोसा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, आयु कर्म के बंद से बचने के लिए ज्यादा ध्यान ही करना पड़ेगा। तो ऐसा ज्यादा ध्यान का पुरुष घड़ी ने कर नहीं रखा आज है, अच्छा ये वाला है यहां ठीक है, टाइम हो गया, आयु कर्म का बंध जीवन के तीसरे भाग में होता है और उसमें आठ विभाग और कर सकते हैं, उसके तीसरे भाग में होगा, प्रत्येक के तीसरे तीसरे भाग में होगा। तो ये आयु कर्म का जो बंध है ये बंध बहुत मायना रखता है, आयु कर्म का बंध होने से जल्दी अपना काम कर लेना चाहिए। तो आपको भी यही सोचना चाहिए, देवगति में जाना तो ठीक है जाएंगे उसका कोई संबंध नहीं, परंतु सतत संयम के परिणाम, सतत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम रखेंगे तो एक तो अपने जीवन में कर्मों की निर्जरा होगी, अशुभ कर्म के बंध से ज्यादा बचेंगे, देव गति में जाना पड़ रहा है, देवायु को बंद करना पड़ रहा है, ये तो हमारे पास सहन न होने के फलस्वरूप जाना पड़ रहा है, क्योंकि छपक श्रेणी तो चढ़ नहीं सकती आज के सौनन से, आज चौथे नंबर का चौथा पांचवा छठा तीन सहनन है, इससे तो मोक्ष जाना संभव नहीं है, पर संयम धारण करना भी क्या असंभव है, कर्म निर्जरा करना भी क्या असंभव है, पाप कर्म कर्म के बंध से बचना भी क्या असंभव है, ये तो संभव है। और पाप कर्म की निर्जरा घाती कर्म की निर्जरा है, घाती कर्म की निर्जरा आज भी हम कर सकते हैं, और फिर ये काम करेंगे तो समाधि मरण भी अच्छी तरह से हो सकता है। असंयम के साथ मरने की अपेक्षा संयम के साथ मरना अच्छा है या असंयम का मरण ही अच्छा है? संयम का मरण अच्छा है। तो संयम के साथ मरना है, ये संकल्प जिसको उत्पन्न होता है वो मोक्ष मार्ग में ऐसा नहीं सोचता कि मेरा असंयम अवस्था ही ठीक है, हमको तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ऐसा सोचेगा क्या? वो ऐसा सोचेगा तो अज्ञानी कहलाएगा। क्यों अज्ञानी कहलाएगा? ये तो जानता ही नहीं है कर्म निर्जरा लाभ है, संयम को प्राप्त होना ये लाभ है, समाधि मरण करना अच्छा है, ये नहीं समझता, असंयम मरण ही अच्छा है, ये समझने जैसा हो जाएगा। तो भगवंतों ने कहा पंचम काल है तो पंचम काल में भी डरो मत, विकल्प मत करो कि यहां कुछ भी नहीं है, मोक्ष ही नहीं है तो काय को दीक्षा लेना मोक्ष नहीं है, तो काय को इतना परिश्रम करना पसीना बहाना यही ठीक है, असंयम अवस्था ही ठीक है। तो असंयम अवस्था में बढ़ेंगे तो समाधि मरण नहीं, और समाधि मरण नहीं है तो भवों की सीमा में आप नहीं आ सकते। संयम के साथ मरोगे तो भवों की सीमा बंध जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 8 भव में और कम से कम 3 भव में मोक्ष गारंटी है, भगवान लिख के दे रहे हैं आपको। भवों की सीमा में आ जाओगे पंचम काल में संयम धारण करने से, इसलिए ऐसा मत सोचो कि आज मोक्ष नहीं है, वो चतुर्थ काल में ही देख लेंगे, नहीं, भवों की सीमा नहीं बंधेगी। और ऐसा करके असंयम के साथ मरण करोगे तो सम्यक दृष्टि भी यदि हो तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल यानी लगभग वो अनंत काल ही है, सक्षय अनंत काल उसका दूसरा नाम है अर्ध पुद्गल परावर्तन का, उतने समय तक भटकते भटकते अनेक योनियों में भटक सकते हैं, ये 8 भव या 3 भव नहीं रहेंगे। और समाधि मरण करेगा, संयम के साथ मरण करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 8 और 3 भव में गारंटी है मोक्ष जाएगा वो अल्प भव में। तो संयम धारण करके पंचम काल में मरण करने का लाभ यह है कि हम भव की सीमा में आ जाते हैं और जल्दी मोक्ष मिलता है, जल्दी मोक्ष मिलता है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, कोई कोई सोचते हैं ऐसा भी, आज पंचम काल में तो मोक्ष नहीं मिलने वाला है, काय को दीक्षा लेना, काय को तप करना, फिर सम्यक दर्शन को भी क्यों ले रहे हैं? वो तो चतुर्थ काल आने पर ही लेना उसको सम्यक दर्शन की भी क्या जरूरत है, अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहता है, देखेंगे चतुर्थ काल में ही रह जाए वो भी, अर्ध पुद्गल परावर्तन भी उसी समय देख लेंगे, ऐसा सोच करके। तो क्या मिथ्यात्व के साथ मरण करना चाहोगे? तो मिथ्यात्व के साथ मरण करना तो उसके साथ भी मरण है, संयम के साथ मरण करो या सम्यक दर्शन के साथ मरण करो उसके साथ भी मरण है, इन तीनों में कौन सा अच्छा, उत्कृष्ट बात किसकी है? संयम के साथ मरण करना उत्कृष्ट बात है। क्यों? क्योंकि भव गारंटी है, भव गारंटी है। और मिथ्यात्व के साथ मरण करोगे तो इसी भव से, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ तो अच्छे परिणाम रहेंगे नहीं, इसी भव से निबोध भी जा सकते हैं, और वहां गए तो अनंत काल तक रह सकते, तो भटक गए पुनः, फिर वहां से उठ करके मनुष्य पर्याय में कब आना इसका कोई भरोसा नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से जीव के परिणाम मंद हो गए, मनुष्य पड़ गया तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, चला गया समुद्र में गिर गया, और समुद्र में गिर गया तो इधर भी तट नहीं दिख रहा है, उधर भी तट नहीं दिख रहा है, किधर जाऊं, जाने के लिए रास्ता नहीं दिखता और जीव वहीं पड़ा रहता है। टाइम हो गया जिनवाणी।